ओम शांति। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 1969। अब आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। सातवां पॉइंट है, इंतजार को निकाल, इंतजाम में लग जाएंगे फिर 75% रिजल्ट हो जाएगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे है जो भी सामने है वैसे ही हालतों में इस शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। बाबा कहते हैं इंतजार को निकाल, इंतजाम में लग जाएंगे फिर 75% रिजल्ट हो जाएगी। अभी इंतजार का समय समाप्त हो गया। वैसे संगम युग के आदि से ही इंतजार का कोई समय नहीं था, फिर भी समय अभी अंत के भी अंत में पहुंचा है। तो इंतजार करना छोड़ दो, अभी इंतजाम करो अपना कि हम कैसे आत्मिक स्थिति में आ सकते हैं, कौन सी विधि से आ सकते हैं, क्या करने के बाद हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी, इसका इंतजाम करो। इसके लिए आपको जो जो चाहिए उसकी तैयारी करो। अपने से विचार करो कि कौन सा इंतजाम करने के बाद हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहते हैं 75% रिजल्ट हो जाएगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि 75% से नीचे नहीं आना, क्योंकि समय बदल चुका है। पहले चलता था, वास्तविक चलता नहीं था लेकिन बच्चे चलाते थे, अभी तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि समय समाप्त हो गया। जितना हो सके समय को सफल करो। अंत समय में न धन काम आएगा, न तन काम आएगा, न प्रॉपर्टी काम आएगी, न कोई बात काम आएगी। आपने कितना जमा किया, अपनी स्थिति को कहाँ तक लेकर गए, कितनी ऊंची बनाई, यही काम आएगा। हर बच्चा, हर कोई कल के भरोसे जी रहा है, जो कल कभी नहीं आने वाला, कल के भरोसे चल रहे हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, समय मिलेगा तब करेंगे, यह कल का भरोसा है। पर हमेशा याद रखना कल में काल छिपा है, बस एक मात्रा का फर्क है। कल में काल छिपा है, कल के साथ काल भी आ रहा है, और काल का कोई भरोसा नहीं है, वो आज भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो कल है वो आज बनने वाला है, और जो आज है वो वापस कल बनने वाला है, पास्ट वाला। इसलिए कल के भरोसे जीना मना काल के भरोसे जीना, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, काल के बारे में कि वो कब आएगा, क्या करेगा। बच्चों को लगता है कि हम अंत तक रहेंगे, सभी को लगता है कि बाबा के साथ अंत तक रहेंगे, पर इस गलत फहमी में नहीं रहना। आज को सफल करना, अपनी अवस्था को ऊंचा बनाना, बाप समान बने तो अंत तक रहेंगे, अगर नहीं बने तो कहां से रहेंगे। उसमें भी बाप समान बनकर अगर ड्रामा होगा तो रहेंगे। तो बाप समान आज बनो, फिर कल की कोई श्योरिटी दे सकते हैं कि बाप के साथ रहेंगे, वरना बच्चे कल के भरोसे जी रहे हैं कि हम बचेंगे, हम रहेंगे बाप के साथ। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे अपनी अवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे, वो भविष्य में खोए हुए रह रहे हैं। आज क्या करना है इसके बारे में सोचो, आज को गवाओ नहीं, आज चला जाएगा, वो पास्ट वाला कल बनेगा, कल आ रहा है। कल इस दुनिया में क्या होगा, प्रकृति की हलचल क्या होगी, आत्माओं के बीच में क्या होगा, समय क्या खेल दिखाएगा, ड्रामा क्या करेगा, कोई नहीं जानता। और ऐसे कल के भरोसे सभी जी रहे हैं। तो आज को सफल करो, इसलिए आज इंतजाम करो, आज के लिए चेक करो कि कितनी बार ड्रिल हुई, आज कितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, आज कितना समय बाबा को याद किया, आज कितनी बार मुरली पढ़ी या सुनी, आज कितना समय विश्व सकाश दिया। आज के बारे में सोचो। जिनका वर्तमान अच्छा है, निश्चित रूप से उनका भविष्य भी श्रेष्ठ होता है। और जो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, निश्चित रूप से उनका वर्तमान अच्छा नहीं है, इसलिए वो भविष्य में खोए हुए हैं कि हम कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये सब भविष्य में खोने वाले बच्चे हैं। और जो समय में, काल में कब खो जाएंगे अपने नाम के साथ, ये उनको भी पता नहीं। इसलिए आज को सफल करो, आज में भी अभी को सफल करो। अभी यह मिनट जाने वाला है, यह सेकंड जाने वाला है। इस मिनट में, इस सेकंड में आपने क्या किया और आपको क्या करना है, ये सोचो। इस मिनट में, इस सेकंड, घंटे के बारे में भी नहीं सोचो, इस घंटे में क्या करना है, इस दिन में क्या करना है। यह समय चला गया, अभी इस मिनट में क्या करना है इसके बारे में सोचो। सभी आपके हाथ में, इसलिए समय अनुसार रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। और यह कब होगा, अगर वर्तमान में रहेंगे तब होगा। कारण भी सुना रहे हैं बच्चे, कारण भी सुना रहे हैं। बच्चों के पास सदैव कारण रहते हैं। कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं कल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ये समय का इंतजार है, कल नहीं, दो दिन के बाद करेंगे, ये समय का इंतजार है। समय का इंतजार करने वाले बच्चों को बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो समय का इंतजार कर रहे हैं। कोई समस्याओं का। कोई समझते हैं यह समस्या खत्म हो जाए तो हम अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, यह समय बदल जाए तो अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे। कोई संबंधों का, यह संबंध ठीक हो जाए तो हम अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे। कोई फिर अपने शरीर का, किसी को लगता है अपना शरीर ठीक हो जाए तो हम अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे से आत्मिक स्थिति बनाएंगे, बाबा को याद करेंगे, विश्व सकाश देंगे। समय, समस्या, संबंध और शरीर, इनके इंतजार में जो बैठे हैं वो सदा इंतजार ही करते रहेंगे, वो कभी बन नहीं पाएंगे। ये कारण है बच्चों के, समय हर किसी के पास है और आपको लगता है कि आज का समय बुरा है। क्या गारंटी है कि कल इससे अच्छा आएगा, इससे बुरा नहीं आएगा? आप क्या जानते हो समय के बारे में? इसलिए जो समय आज आपके हाथ में है ना, अभी इस क्षण में, इससे बेहतर समय कोई नहीं है। इस बात को हमेशा बुद्धि में याद रखना। अगला मिनट भी क्या होगा आप नहीं जानते, अगला घंटा, अगला दिन छोड़ दो। इसलिए अभी जो समय आपके हाथ में है यह सबसे बेहतरीन समय है। इसलिए समय के भरोसे नहीं चलो कि कल करेंगे। समस्या, किसी को लगता है कि आज मेरे जीवन में बहुत समस्या है, किसी की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक समस्या है। यह समस्या अगर निकल जाए, ठीक हो जाए तो हम कल बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे इस समस्या के बाद। पर अभी जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, बाबा कहेंगे अच्छी समस्या है, इतनी भी दुखदायी समस्या नहीं है जो कल या कल के बाद आने वाली है। इसलिए कल के भरोसे जियो नहीं, आज जो समस्या है, जैसी समस्या है, उस समस्या में पुरुषार्थ करो। कल इससे वर्स्ट समस्या आ सकती है, कल इससे और बिगड़ी हुई समस्या आ सकती है, कल आपके जीवन में और अशांति हो सकती है। इसलिए आज जो कुछ थोड़ी बहुत शांति मिली है उसमें पुरुषार्थ करो। कोई संबंध के लिए रुके हैं कि यह संबंध ठीक हो जाए तो हम पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं आज जो यह संबंध है यह बेहतर है, कल और बिगड़ने वाला है। इसलिए कल के भरोसे रहो नहीं संबंध के आधार पर, कल हर संबंध बिगड़ने वाला है। इसलिए आज जो संबंध है ना, उस संबंध से योग करो, पुरुषार्थ करो, कल के भरोसे नहीं रहो। कोई शरीर के आधार से चलते हैं, कहते कि आज बुखार है, सर्दी खांसी है, थोड़ी थकावट है, कल क्या होगा आप नहीं जानते। आप इस आशा में हो कि कल शरीर स्वस्थ हो जाए फिर हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। पास्ट वाले कल में शरीर जब स्वस्थ था तब कब आपने पुरुषार्थ किया? पास्ट वाले कल में जब संबंध अच्छे थे, पास्ट वाले कल में जब समस्याएं नहीं थी, तब कब आपने पुरुषार्थ अच्छा किया? पास्ट वाला कल जब अच्छा था तब कब आपने पुरुषार्थ किया? याद करो, जो आने वाला कल अच्छा होने के बाद आप करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन को, आज के समय को देखो और कोई कारण नहीं दो। बाबा को कारण पसंद नहीं है। बाबा हमेशा कहता है आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशंस, आई वॉन्ट ओनली रिजल्ट्स। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देना, देना है तो रिजल्ट देना मुझे। ये एक्सप्लेनेशन वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये स्वयं को ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं जो बाबा को एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं। कारण मत दो, निवारण करो, कारण का और पुरुषार्थ बढ़ाओ। समस्या सभी को है इस दुनिया में, इन सारी समस्याओं से कोई छूटा नहीं है। समय की समस्या सबको है, संबंधों की, फिर शरीर की समस्या सभी को है, और अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी है सभी के पास। लेकिन बाबा कहते हैं समस्या को आगे नहीं करो, समाधान को आगे करो। और जो बच्चे होते हैं ना मजबूत, उन्हें पहाड़ी इलाकों में कांटे के रास्तों में चलना आता है। वो नहीं कहते कि इस रास्ते में बहुत कांटे हैं या फिर यह इलाका पहाड़ी है, कैसे हम चढ़े। नहीं, समझदार बच्चों को पता है कि हमारे अंदर ताकत है और हम कर सकते हैं क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। वो कभी बाबा को कारण नहीं देंगे कि बाबा इस वजह से आज पुरुषार्थ नहीं हुआ, इस वजह से आज मुरली नहीं सुनी, किसी भी प्रकार का। फिर आपकी नींद हो, आपका भोजन हो, आपका रूटीन हो, कारण नहीं देंगे बच्चे। नींद को भी फिटाकर हटाकर मुरली सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, एक टाइम का भोजन बाजू में रखेंगे पर पहले पुरुषार्थ करेंगे। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो लगन वाले, मजबूत, शूरवीर, महावीर बच्चे होते हैं। महावीर जो होते हैं उनके पास हर बात का हल होता है। समस्याएं उनके लिए तोहफा होती है, उनको बहुत मजा आता है समस्याओं से खेलने के लिए। उनको लगता है कि शरीर बीमार पड़े, शरीर में तकलीफ हो और हम योग करके दिखाए बाबा को, ये उनके लिए चैलेंज वाली बात होती। शरीर ठीक होने के बाद तो हर कोई योग करता है, पर महावीर बच्चों की सोच होती है कि शरीर बीमार पड़े और हम योग करके दिखाए। ये ऐसे ताकतवर बच्चे होते हैं जिसके कारण कभी उनका शरीर बीमार नहीं पड़ता। समझने की कोशिश कीजिए। उनका होता है कि संबंध बिगड़ जाए, समस्याएं आए और समय खत्म हो जाए और हम योग करके, पुरुषार्थ करके दिखाए बाबा को। ये ऐसे बच्चे होते जिनको चैलेंजेस में कुछ करके दिखाने का आनंद होता है। ये ऐसे बच्चे होते, इसमें ही इनको आनंद आता है। उसके कारण क्या होता है, इनके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होती, न समय की, न समस्याओं की, न शरीर की, न संबंध की, कभी कोई तकलीफ नहीं होती। जो बच्चे हर तकलीफ के लिए, हर समस्या के लिए एवर रेडी है कि कभी भी आए, उनके पास कभी समस्या नहीं आती। यह यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, लॉ है। जो डरते हैं ना उन्हीं के पास आती है। मैदान में जो फील्डिंग करने के लिए डरता है ना, गेंद उसी के पास बार बार जाती है और उसी से मिस्टेक होते रहते हैं क्योंकि वो डर रहा है। पूरी मैच में कभी कभी ऐसे होता है कि जो बहुत निडर रहता है उसके पास एक भी गेंद नहीं जाती पूरी मैच में, बस मैदान में खड़ा रहता है और आनंद लेता है दोनों साइड से खेल का। इसलिए महावीर बनो। बाबा कहते हैं लेकिन जैसे हैं, जो भी सामने हैं, वैसे ही हालतों में, इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। अभी किसी को अगर ड्रामा में एक टांग नहीं, एक हाथ नहीं, तो क्या एक टांग और एक हाथ लगने के बाद पुरुषार्थ करेंगे? जैसे है वैसे पुरुषार्थ करो। अभी पुरुषार्थ भी क्या है कि अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, इतना सा पुरुषार्थ है जिसमें किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं लगती, किसी समस्या का होना या ना होना इसका कोई संबंध नहीं, वहां पर शरीर का ठीक होना या ना होना इसका कोई संबंध नहीं है, संबंधों का ठीक रहना या नहीं रहना यह भी संबंध नहीं है। ये जो बाबा की याद है आत्मा समझ के, इसमें कोई संबंध नहीं है कि ये हो तो ये करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं एक्सटर्नल कि उसके लिए बिजली चाहिए, उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, या कोई ऐसे माहौल चाहिए, लाल दिया चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बुद्धि की बात है, मन की बात है, संस्कारों की बात है। एक बार आत्मा का ज्ञान मिल गया, बाबा का ज्ञान मिल गया, पूरा हो गया। ये तो अभी बुद्धि में है, इसके लिए कोई नोटबुक पेन नहीं चाहिए कि बार बार उसमें से पढ़ो और फिर वो विधि करो, ऐसे तो कुछ है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे है जो भी सामने है वैसे ही हालतों में, इस शरीर में, इसी ही शरीर में, ड्रामा में, संगम युग में, जैसे आपको शरीर मिला है उसी ही शरीर में संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। इस आशा में नहीं रहना कि शरीर बदल जाएगा, दुख समाप्त हो जाएंगे और पुरुषार्थ करेंगे, सब समाप्त हो जाएगा और पुरुषार्थ भी बाकी रहेगा। इसलिए कारण नहीं दो, जो है जैसे है, बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलो। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है, हरेक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी भी समय बिगड़ा नहीं है, बिगड़ने वाले समय को देखना, फिर लगेगा कि पिछला समय बहुत अच्छा था, अभी बिगड़ना शुरू हो गया है समय, फिर भी इतना नहीं बिगड़ा है जितना आपने सपने में भी सोचा नहीं, जो बाबा ने पहले ही मुरली में बताया है क्या होने वाला है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं। अभी आपको आधार है सारे, बिजली के, स्वस्थ शरीर के, खान पान के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, हर चीज का आपको आधार है, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो ऑडियो, हर चीज का आधार है यहाँ पर। एक समय आएगा जब सारे आधार टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि पुरुषार्थ कैसे करना है। और जिन्होंने आधार में पुरुषार्थ किया है वही उस समय पुरुषार्थ कर पाएंगे, वरना मुश्किल है, नहीं होगा पुरुषार्थ। बातों के अधीन है, बच्चों को बातें करना बहुत पसंद है, बस बातें करते रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं, बस बातें, अपना मन और मन की बातें, मन की बात बस। बाबा कहते मन की बात क्यों सुनाते हो, अपनी बात सुनाओ। अपनी बात क्या सुनाएंगे, अपने को ही जानते नहीं, बस मन की ही बात सुनाएंगे आप, जो मन आपको भी ठीक तरीके से जानता नहीं और आप भी उसे ठीक तरीके से जानते नहीं, उस मन की बात आप सुनाते रहते हैं। जब कभी भी चर्चा होती है, कभी हमने अपनी बात कही है, चर्चा में हम दूसरों की ही बातें करते रहते हैं, अपने बारे में जानते ही नहीं तो अपनी बात कहां से करेंगे। ये समझ है सभी के लिए, इसलिए बातों के अधीन नहीं होना। अधीन होना है ना तो योग के अधीन होना, बातों के अधीन नहीं होना। बातें कभी भी समाप्त नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि समस्याएं समाप्त नहीं होने वाली, तो बातें भी कभी समाप्त नहीं होगी। इस बात को समझो। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं, हर कोई बस अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। मेरे मन की कहानी बस सुनाते रहते हैं। दिन भर में समय ना मिले तो अमृत वेले बस कहानी सुनाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम जो कहानी मुझे सुना रहे हो, ये कहानी मैंने ही ड्रामा में लिखी है, तुम क्या सुनाओगे मुझे? इससे अच्छा तुम योग करो, मुझे याद करो अपनी स्थिति में आकर। मैं जानता हूं तुम्हारी कहानी को, तुम नहीं जानते हो मेरे ज्ञान को, इसलिए मैं जो बताता हूं वो करो। तुम मत सुनाओ मुझे कहानी, तुम क्या सुनाओ? इस दुनिया का, इस पार्ट का, इस मन का, दो चार सिचुएशंस का, सौ हजार सिचुएशंस का सुनाओगे और क्या सुनाओगे? और ये सब सिचुएशंस मैं जानता हूं, इसलिए मुझे नहीं सुनाओ, मैं जो सुनाता हूं वो करूं। ये समझ है, फिर भी बच्चों का मन मानता नहीं, नहीं बाबा को सुनाना है। क्या सुनाएंगे? चलो सुना भी दिया बच्चों ने, पर सुनाने के बाद बाबा ने जो कहा वो किया आपने? कभी किया है जीवन में? नहीं किया, तो अभी भी सुना के क्या मिलेगा? इससे अच्छा वो जो कहता है वो करे। एक जो सच्चा शिष्य होता है वो सिर्फ सुनता है, सिर्फ सुनता है, अपनी समस्या भी गुरु को नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि गुरु को हर बात पता है। मेरे बताने से ही उसको पता हो गया, ऐसे नहीं, उसको हर एक बात पता है। बेहतर है मेरी समस्याओं वाली जीवन बाजू में रखूं और मैं गुरु से कुछ लेता रहूं, नहीं तो समस्या सुनाने में ही जीवन जाएगी और गुरु से जो लेना है उसके लिए समय बचेगा नहीं। इसलिए सच्चा शिष्य सुनता है और सुनते सुनते गुरु की बात मानते करते कब जीवन बदल जाती है ये उसे भी पता नहीं चलता। पर जो सुनाने वाले शिष्य होते हैं वो बहुत मुश्किल अपनी जीवन को बदल पाते हैं, क्योंकि वो सुनाने वाले हैं, सुनने वाले नहीं। इसलिए अभी तक जितने गुरु होके गए दुनिया में, बहुत कम उनके ऐसे शिष्य बने उनके जैसे, बहुत कम, गिने चुने शिष्य बने, उंगलियों पर गिनने जितने। तो आप सभी अपने को चेक करो, क्या आप भी अपनी कहानी बाबा को सुनाते हो? क्या कहां तक सुनाएंगे? जो कहानी उसने लिखी उसकी कहानी उसी को कहां तक सुनाएंगे? इससे अच्छा जो कहानी आपको पता नहीं है वो कहानी उससे सुनो और अपने जीवन को भरपूर बनाओ, खुशहाल बनाओ। अनुभव करना कुछ दिन के लिए बाबा को कुछ नहीं सुनाना और उसका सुनना, जीवन बदलती है या नहीं ये चेक करना, पर उसका सुनना। और अगर जीवन नहीं बदले ना तो फिर जरूर उसको 24 घंटे सुनाना, जिस भी रूप में मिले वो, निराकार आकार साकार, सुनाना उसको 24 घंटे के लिए सुनाना, छोड़ना नहीं उसे अगर जीवन नहीं बदले तो। इसलिए पहले अनुभव करना। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें। जब शरीर में रोग नहीं था तब कब आपने पुरुषार्थ किया? जो अभी आप कह रहे हो कि शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे, किया आपने? जब शरीर ठीक ठाक था, तंदुरुस्त था, इतने वर्षों में कब आपने पुरुषार्थ किया? जो अभी बाबा को कह रहे हो कि बाबा शरीर को स्वस्थ बनाओ तो हम पुरुषार्थ करें, फिर भी अभी भी शरीर बिगड़ा नहीं है। जो समस्या आने वाले समय में आने वाली है शारीरिक रूप से, वो अभी भी नहीं आई है, इसलिए अभी भी समय है पुरुषार्थ करूं। जब हड्डी के अंदर जो मगज होता है ना, वो भी पेन करने लगेगा ना, तब पता चलेगा शारीरिक पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है। हड्डी भी ऐसे पेन करने लगेगी, बाहर का तो छोड़ ही दो, फिर पता चलेगा दुख और दर्द क्या होता है। फिर अभी मगज पेन कर रहा है, हड्डी पेन कर रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है, करेंगे क्या? योग ही करना पड़ेगा, इसलिए अभी से आदत डालो। समय बड़ा विचित्र है, बहुत भयानक है, आपकी कल्पना से भी परे है। स्वप्न छोड़ दो, आपकी कल्पना से भी भयानक है आने वाला समय, इसलिए अभी से अपनी स्थिति को बनाओ। हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करो तो हड्डी में कभी दर्द नहीं होगा। अपना मगज बाबा को दे दो, फिर कभी मगज में दर्द नहीं होगा। अनुभव करके देखना। जिनको शारीरिक दर्द है ना, उनको शारीरिक सेवा करनी चाहिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। दिल से करनी चाहिए। जिनको मानसिक दर्द है ना, उनको मन की सेवा करनी चाहिए, शुभ भावना शुभ कामना देने की। जो अपने संस्कारों से परेशान है ना, उन्हें अच्छे संस्कारों का दान देना चाहिए। जो अपनी बुद्धि से परेशान है ना, उनको विश्व सकाश देना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। करके देखो, यही अंतिम उपाय है समस्याओं के। अंत में ना धन काम आएगा, ना तन काम आएगा, न कोई संबंध काम आएगा। काम आएंगे तो यही योग के उपाय काम आएंगे। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें। जैसा है शरीर, उस शरीर में पुरुषार्थ करो, क्योंकि आने वाले समय में शरीर और बिगड़ने वाला है। कोई कहते हैं बंधन हटा दो तो हम पुरुषार्थ करें। बाबा कहते बंधन नहीं हटेगा, इसी बंधन में इसी स्टेट में तुम पुरुषार्थ करके दिखाओ, बंधन नहीं हटेगा। अगर हटाना है तो तुम अपने पुरुषार्थ से बंधन को हटाओ। बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है कि बंधन को हटाओ। मैं कुछ ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनाकर आपको प्रमोट नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ाना चाहता, एनकरेज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब प्रमोशन खत्म होगा, एनकरेज खत्म हो जाएगा, अब वापिस नीचे आ जाएंगे। तो क्या बाबा वापिस आपको ये सब करने आए? मैं ज्ञान दे रहा हूं, ओपनली दे रहा हूं। समस्या हर बार आएगी, अब ये नहीं समझना कि समस्या नहीं आएगी। एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि यह कलयुग है, समस्याओं का युग है। शरीर की एक बीमारी खत्म हुई, दूसरी आएगी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी आएगी, ये लगा ही रहेगा। अब इस गलत फहमी में नहीं रहना कि ये खत्म होगा तब हम करेंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे फिर भी कुछ होगा नहीं आपसे। कोई कहते बंधन हटा दो, बंधन नहीं हटेंगे, पुरुषार्थ करो। लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा, दूसरा आएगा। बाबा कहते एक बंधन हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा, क्योंकि कलयुग है। इसलिए आशा नहीं करना कि बंधन हटेगा, पुरुषार्थ करना। जो हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, जिस समय में हो, पुरुषार्थ करना। अभी अगर अंतिम घड़ी हो तो क्या करेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे ना। अब बच्चे इस घड़ी को अंतिम घड़ी ही नहीं समझते, इसलिए आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। इसलिए आप ऐसे नींद में सोए हुए हो कुंभकर्ण की। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा, फिर क्या करेंगे। समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी, इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना। जो है, जैसा है, उसमें हमें मौज में रहना है, उसमें हमें चलना है। तन का बंधन गया, मन ऊपर नीचे होता रहेगा। मन ऊपर नीचे हुआ वो शांत हुआ, धन ऊपर नीचे होगा, धन ऊपर नीचे हुआ वो ठीक हुआ, संबंध ऊपर नीचे हो जाएंगे। करेंगे क्या, क्या हर बार रीजन देते रहेंगे कि दो दिन चार दिन ये बात ठीक होने दो, फिर हम आएंगे पुरुषार्थ करेंगे। एक हफ्ता 15 दिन यह ठीक होने दो, फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, भट्टी करेंगे, योग करेंगे। बाबा कहते हैं इस आशा में नहीं रहना, निराशा हाथ लगेगी। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना। अभी जो बात आपको सुना रहे, कलयुग के अंत तक आपके जीवन में कोई न कोई समस्या सदा ही उपस्थित रहेगी। तन की हो, मन की हो, धन की हो, संबंध की हो, कोई न कोई समस्या सदा उपस्थित रहेगी। ऐसे कभी होगा नहीं कि आपका जीवन निर्विघ्न बने, समस्या रहित बने। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना। कुछ न कुछ रहेगा। अगर आप अपेक्षा में रहेंगे कि यह चला जाए तो उससे बड़ी समस्या आएगी। समस्या नहीं समाप्त होगी, क्योंकि कलयुग है, सतयुग नहीं है। समस्या समाप्त होने के लिए कलयुग में समस्या सदा रहेगी। अभी करना क्या है, मर्जी आपकी है। पुरुषार्थ करना है या समस्याएं समाप्त होने की राह देखनी है, मर्जी आपकी। ऐसे करते करते आप मृत्यु तक ना पहुंचे और फिर ऐसा ना लगे कि समय गया हाथ से, सब कुछ गया हाथ से, जो करना था वो नहीं किया। बाबा ने बहुत समझाया पर कभी किया नहीं, कभी उसकी बात मानी नहीं, कभी उसके कहने से चले नहीं, अपनी ही मर्जी चलाते रहे। ऐसा ना लगे आपको। बाबा को क्या कहा आपने भक्ति में, बस तू आ जा, मैं मेरा पूरा समर्पण कर दूंगी या कर दूंगा, कहा ना आपने? और कहा कि तुम्ही संग खाऊ, तुम्ही संग बैठू, सब कुछ तेरे संग, तो अभी क्यों नहीं करते, अभी क्यों पीछे हट गए? देखो, आप आपका वायदा तोड़ रहे हो, बाबा अपना वायदा निभा रहा है, आप अपने वायदे को चेक करो। आपको सुख सुविधाएं चाहिए, आपको सब ठीक ठाक चाहिए, पर यह कभी होगा नहीं, हमेशा याद रखना। और अगर आप होने की सोच में हो तो यह आपकी एक बहुत बड़ी बेसमझी ना समझी है कि यह सब ठीक होगा। जितनी समस्याएं बाबा ने बोली, समय की, संबंध की, शरीर की, मन की, धन की, इसमें से कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में अंत तक रहेगी। करना क्या है, मर्जी आपकी। अभी ये खुद नहीं हटेंगे, ये सारी समस्याएं अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। अगर आपको हटाने हैं तो पुरुषार्थ से हटा दो, बेहतर है। उनको हटाने की कोशिश नहीं करो, अपना पुरुषार्थ उन समस्याओं को हटाने में व्यर्थ नहीं गवाओ, इससे अच्छा अपना पुरुषार्थ अपनी उन्नति के लिए लगाओ, अपने विकास के लिए लगाओ। आपका विकास हो जाएगा, अपनी उन्नति हो जाएगी, समस्याएं अपने आप हट जाएंगी। आप जो कमा रहे हैं वो कहीं गलत जगह नहीं लगाओ, गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करो समस्या हटाने में, इससे अच्छा आपकी कमाई बाबा के पास रखो। कमाई बढ़ते बढ़ते समस्याएं अपने आप हट जाएगी, इसलिए समस्याओं का विचार नहीं करो, पुरुषार्थ का विचार करो, अपनी स्थिति का, योग का, सकाश का विचार करो। अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, इस गलत फहमी में रहना नहीं। बाबा किसी के भी कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करता, यह बाबा का काम नहीं है और ना ही समय करता है, समय भी कभी नहीं करता। समय के अनुसार समस्या आई है और समय के अनुसार जाएगी। आपको लगता है समय ने ठीक कर दी, जितना भोगना था आपने भोग लिया, वो भी समय में था, इसलिए बाप दादा के ऊपर यह आश नहीं रखना कि बाप दादा हटाएंगे इन सारी समस्याओं को, वो बाबा का काम नहीं है। बाबा आए हैं ज्ञान देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, उतना ही बाबा का काम है, बाकी करना सिर्फ आपका काम। गाइडेंस भी वो जनरल दे रहा है, पब्लिकली दे रहा है सबके सामने, उसी से अपनी समस्याओं को हटाओ, समाप्त करो, अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ, यह आपका कर्तव्य है। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है, यह नहीं समझना। इस बात को ध्यान में रखना, इस संगम युग में आपने आपके एक आत्मा के मन के शांति के लिए बाप दादा का कितना समय लिया, इसकी चेकिंग करना, इसकी चेकिंग करना कि बाबा का आपने कितना समय लिया इन सारी बातों के लिए, और अपना हिसाब लगाना। बहुत से बच्चे बाबा से मिलने आते हैं और समस्याओं की चर्चा करते हैं, क्या यही बाबा मिलन है? कहेंगे कि मेरी नौकरी ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा परिवार ठीक नहीं चल रहा है, परिवार में एकता नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, यही आपका बाबा मिलन है क्या? इसी के लिए बाबा मिलन करते हो, एक जन्म की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप बाबा मिलन करते हो क्या? एक जन्म की समस्याओं को ठीक करने के लिए बाबा मिला है आपको? इन्हीं बातों के लिए, एक मन की अशांतता के लिए, उसको शांति देने के लिए बाबा मिला है आपको? कभी सोचा है आपने कि बाबा क्यों मिला है, बाबा से क्या चर्चा करना चाहिए, बाबा को क्या सुनाना चाहिए? कभी विचार किया है? कभी विचार ही नहीं किया, इसलिए आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बाबा के पास बैठकर क्या चर्चा की जाती है। जब बाबा सामने हैं तो क्या चर्चा की जाती है, क्या पूछा जाता है? कभी लौकिक छोड़ के बाबा के साथ कोई चर्चा की है आपने? चेक करो अपने को, जब से बाबा मिला है क्या? तो बाबा मेरे ट्रेन की टिकट कंफर्म करा देना क्या? तो बाबा मेरी जर्नी अच्छे से करा देना। ऐसे क्यों नहीं बोल रहे कि बाबा इस ट्रेन में बाबा मिलन के लिए जा रहे, अगर मर गए तो आपकी याद में शरीर छुड़ाना, ऐसे कभी बोला है कि बाबा यहां यहां जा रहे, अगर शरीर छूटा तो आपकी याद में छुड़ाना, कभी ये बातें की है? नहीं, बस अपना लौकिक लेके बैठे हैं, अपना लौकिक, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार, अपना जॉब, अपनी बिजनेस, अपना परिवार, क्या इन्हीं बातों के लिए बाबा आया है क्या नीचे? यही बाबा को काम है क्या कि एक तन, एक मन, एक धन, एक एक ये ठीक करे बाबा? आपको समझ होनी चाहिए कि बाबा का कर्तव्य क्या है, बाबा का रोल क्या है, बाबा किस लिए इस धरा पर आया है। 5000 साल के बाद वो हमें मिला है क्या? सुदामा कृष्ण से मिलने के बाद उन्होंने अपने तन, मन, धन, परिवार की चर्चा की क्या? समस्याओं की चर्चा की क्या कृष्ण से? पढ़ो जरा, समझो जरा बच्चे, इसी में खोए रहते हैं। इसलिए यह सारी बातें आज से बाबा से नहीं करना, अभी तक की वो की, अभी बाबा की श्रीमत है, आज से बिल्कुल नहीं करना। आपका तन, मन, धन, परिवार, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपकी सारी बातें, लौकिक कोई भी बात लेके बाबा के सामने नहीं आना। बाबा आया है सिर्फ अपनी पहचान देने, आप आत्मा हो, अपनी खुद की पहचान देने कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, परमपिता परमात्मा, और योग सिखाने, यही बाबा का कार्य है। आज से लौकिक में आपको फायदा हो, नुकसान हो, शरीर छूटे या शरीर बचे, बाबा से चर्चा नहीं करना, लौकिक की कोई भी, बस बाबा की चर्चा सुनना, बाबा का ज्ञान सुनना जो सुना रहा है। और किसी बच्चे को अगर इन सारी बातों को लेकर बाबा मिलन करना है तो मत करना बाबा मिलन, इन बातों के लिए बाबा मिलन करने नहीं आना। इतने वर्षों से बाबा मिलन कर रहे हैं पर बच्चों को पता ही नहीं है कि बाबा मिलन होता क्या है, कभी उन्होंने किया ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, बस कहते हैं कि बाबा मिलन करने जा रहे हैं, बाबा मिलन करके आए हैं। समझो इन सारी बातों को, तो बाप दादा इस कार्य के लिए इस धरा पर नहीं है, उनका कार्य समझो और बाबा के साथ संबंध बनाओ और बाबा के साथ चलो, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, बाप टीचर सदगुरु का, और चलो, समझो और चलो बाबा का कार्य क्या है, बाबा का रोल और गोल समझो क्या है, और फिर बाबा के साथ व्यवहार करो निराकार आकार साकार से। फिर आप सबको समझ में आएगा कि सच में बाबा मिलन में कितनी खुशियां हैं, कितनी भरपूरता है, कितनी मौज है, कितना सुख है, कितनी शांति है। फिर होगा सच्चा बाबा मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। और बाबा जो जो शिक्षाएं दे रहे हैं उसे धारण करते चलना, और आज से बाबा मिलन की शिक्षा पक्की धारण करना। बाबा कौन, हम कौन, और हमारा और बाबा का रिश्ता क्या, इस बात को बुद्धि में पक्का करना। फिर निराकार आकार साकार से वैसे चलना, फिर जीवन में मौज आ जाएगी, भरपूरता आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।